ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम दशवां स्कंद चौथा अध्याय, अध्याय का नाम है राजा कंस के अत्याचार। श्लोक संख्या 5। बहवो हिंसिता भ्राता शिशवः पावकोपमा त्वया देव निःसृष्टेन पुत्रिकेका प्रदीयताम्। बहवो हिंसिता भ्राता शिशवः पावकोपमा त्वया देव निःसृष्टेन पुत्रिकेका प्रदीयताम्। बहवो हिंसिता भ्राता शिशवः पावकोपमा त्वया देव निःसृष्टेन पुत्रिकेका प्रदीयताम्। धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की बहवा अनेक हिंसिता ईर्ष्यावश मारे गए भ्रातः हे भाई शिशवः अनेक शिशु पावक उपमः तेज और सौंदर्य में अग्नि के समान त्वया तुम्हारे द्वारा देव निःसृष्टेन भविष्यवाणी से पुत्रिका कन्या एक प्रदीयताम् तो मुझे उपहार स्वरूप दे दो। हे भ्राता तुम देववश मेरे अनेक सुंदर तथा अग्नि जैसे तेजस्वी शिशुओं को पहले ही मार चुके हो, किंतु कृपा करके इस कन्या को छोड़ दो, इसे उपहार स्वरूप मुझे दे दो। तात्पर्य यहां हम यह देखते हैं कि देवकी ने सर्वप्रथम कंस के क्रूर कर्मों उसके द्वारा अपने अनेक पुत्रों के वध की ओर ध्यान दिलाया। इसके बाद वे उससे यह कहकर समझौता करना चाहती थी कि उसने जो भी किया यह उसका दोष नहीं था अपितु विधाता का रचा था। इसके बाद उन्होंने उससे याचना की कि वह उन्हें उस पुत्री को उपहार के रूप में दे दे। देवकी क्षत्रिय की पुत्री थी, अतएव राजनीतिक दावपेच जानती थी। राजनीति में सफल प्राप्त करने की अनेक विधियां हैं, दम साम तथा दान। कंस की क्रूरता द्वारा मारे गए अपने पुत्रों के लिए उस पर सीधा आक्षेप करने को दम नीति का देवकी ने पहले आश्रय लिया, किंतु उसके बाद यह कहकर समझौता कर लिया कि यह उसका दोष नहीं था, और उसी के बाद उन्होंने उससे एक वर मांगा। महाभारत के इतिहास में हमें पता चलता है कि क्षत्रियों अर्थात शासकों की पत्नियां तथा पुत्रियां राजनीतिक दावपेच जानती थी, किंतु हम यह भी जानते हैं कि किसी भी स्त्री का मुख्य शासक का पद प्रदान नहीं हुआ। यह मनु संहिता के आदेश के अनुसार है, किंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि मनु संहिता का भी अब उपहास किया जा रहा है और वैदिक समाज के सदस्य आर्य लोग कुछ भी नहीं कर सकते। कलयुग की ऐसी स्थिति है, विधि के विधान बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तस्यैव हेतो प्रत्येत कोविदो न लभ्यते यद भ्रमताम उपरिम अधा तल्लभ्यते दुखवदन्यता सुखम कालेन सर्वत्र गंभीर रहंसा। देवकी अच्छी तरह जानती थी कि उनके अनेक पुत्रों का वध विधि द्वारा निर्दिष्ट था, अतः कंस को दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। कंस को अच्छी शिक्षा देना भी व्यर्थ था। उपदेशो ही मूर्खाणां प्रकोपायेन शान्तये, चाणक्य पंडित के द्वारा। मूर्ख व्यक्ति को अच्छा उपदेश देने पर वह अधिकाधिक क्रोध प्रकट करता है। यही नहीं, क्रूर व्यक्ति सांप से भी अधिक घातक होता है। सांप तथा क्रूर व्यक्ति दोनों ही क्रूर होते हैं, किंतु क्रूर व्यक्ति अधिक घातक होता है, क्योंकि सर्प को तो मंत्रों या औषधियों से मुक्त किया जा सकता है, किंतु क्रूर व्यक्ति का दमन किसी प्रकार नहीं किया जा सकता। कंस का स्वभाव ऐसा ही था। ओम अज्ञा श्री राधा राधिका रमन जी की जय। श्री कृष्ण बलराम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन गौरता। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की इस भागवत कक्षा में। तो दशम स्कंद का ये चौथा अध्याय राजा कंस के अत्याचार प्रसंग ये चल रहा है कि भगवान श्री कृष्ण कंस के कारागार में प्रकट होते हैं, अपना चतुर्भुज रूप दिखाते हैं देवकी वसुदेव को, उनको सुंदर भाषण भी देते हैं और देवकी वसुदेव के आग्रह करने पर दोबारा से अपने द्विभुज रूप में आते हैं और भगवान उनको उपदेश देते हैं कि मुझे आप गोकुल में ले जाइए नंद महाराज के यहाँ पे। और जैसे ही वसुदेव कृष्ण को उठाते हैं योग माया के प्रभाव से उनकी सारी बेड़ियां खुल जाती हैं, सारे के सारे बहुत बड़े बड़े जो दरवाजे थे उसके कारागार के खुल जाते हैं, सारे के सारे द्वारपाल गहरी निद्रा में चले जाते हैं और बड़े प्रेम से वसुदेव यमुना को पार करते हैं। बहुत तेज से वर्षा होती है, पीछे से अनंत शेष जी अपने भाई कृष्ण की रक्षा करते हैं और पूरी रात्रि में यमुना को पार करके वो जाते हैं। यशोदा जी ने उस समय पुत्री को जन्म दिया होता है, वो कृष्ण को वहाँ रखते हैं और उस पुत्री को उठा कर लाते हैं और जैसे ही वापस आते हैं यमुना जी फिर उनको बड़ी आसानी से वापस में आने देती हैं। जैसे ही वो देवकी के साथ उस पुत्री को रखते हैं योग माया के प्रभाव से सारे के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, उनके हाथों पैरों में बेड़ियाँ लग जाती हैं और जैसे ही वो छोटी बच्ची रोना शुरू करती है सारे के सारे द्वारपाल जाग जाते हैं, माने का ग्रहपाल जाग गए। और विश्वाचार्य ठाकुर जी इसके बोलते हैं ग्रहपाल मतलब कुकुर कुत्ते, है ना, जैसे वो सब कंस के रखे हुए कुत्तों के समान थे। जैसे उन्होंने देखा छोटी बच्ची रो पड़ी, भाग के गए कंस के पास और कंस बहुत तीव्र प्रतीक्षा कर रहा था। छह बच्चों का उसने वध कर दिया था, सातवें का उसको लगा कि गर्भपात हो गया, वो स्वयं संकर्षण थे, देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गए। अब आठवां बच्चा उसको पूरा हमेशा वो कृष्णा कॉन्शियस रहता था, सोचता रहता था मेरा काल, जो अपने आप को दर्पण में देखता था उसको दिखता था मेरा शरीर नहीं है, ऐसी ऐसी चीज़ें उसको दिखाई देती थी, बहुत भयभीत अवस्था में रहता था और इसी की प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे ही उनके द्वारपालों ने बोला कि वो आठवां बच्चा आ गया है तो कंस की हालत, कई दिनों से सोया नहीं था, बाल बिखरे हुए थे, ऐसी हालत में भाग कर गया और भाग कर गया उसने बच्ची को उठा लिया और बच्ची को उठा के उसका वध करने लगा। जब वध करने लगा देवकी की तो जानती थी कि मेरा आठवीं संतान सुरक्षित है, ये है ही नहीं आठवीं संतान मेरी, लेकिन फिर भी देवकी ने पिछले श्लोक में बहुत कातर भाव से कहा हे मेरे भाई तुम्हारा कल्याण हो, तुम ये स्त्री है इसका वध मत करो, मैं इसको तुम्हारी बहू बना दूंगी, है ना, तुम दे दो मुझे। और फिर आज के श्लोक में बोल रही है बहवो हिंसिता भ्राता, हे भाई बहुत से तूने बहुत से द्वेष से मेरे भाई मेरे बहुत से शिशुओं को मारा जो कैसे थे पावक उपमा सूर्य और अग्नि के समान चमक रहे थे, वो त्वया देव निश्चेष्ण, चलो कोई बात नहीं वो भाग्य की बात थी, अब ये पुत्री का एका पर दिया था, ये एक पुत्री तो मुझे दे दो। तो शिला प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर तात्पर्य लिखा है और प्रभुपाद जी के तात्पर्य की विशेषता हमेशा ये रहती है कि पूर्ववर्ती आचार्यों की टीकाओं को भी लेते हैं, साथ साथ आज के इस युग में कैसे ये भागवतम का संदेश रेलेवेंट है ये भी स्थापित करते हैं। तो शिला प्रभुपाद जी भागवतम के प्रीफेस में लगते हैं कि भागवतम इज ए कल्चरल रिप्रेजेंटेशन फॉर द री स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ द सोसाइटी, कि एक सांस्कृतिक प्रस्तुतिकरण है पूरे समाज का पुनः आध्यात्मिकरण करने के लिए। तो भागवतम में हमारे जीवन के हर पहलू को छुआ जाता है और इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने देवकी और कंस के चरित्र को तो छुआ ही छुआ, साथ साथ में सांस्कृतिक सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं को भी छुआ। तो बहुत ही रुचिकर ये तात्पर्य है और देखते हैं इसमें किस किस विषय पर हम चर्चा कर पाएंगे सीमित समय में। और मुख्यतः आज हम चर्चा करेंगे कि ऐसी विषम परिस्थिति में, श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं किसी व्यक्ति के चरित्र का मालूम चलता है विषम परिस्थितियों में, प्रोवोकिंग सिचुएशंस में। अब दोनों के लिए बहुत प्रोवोकिंग सिचुएशंस है, खास के लिए कंस के लिए कालो वयम, जो उसको मालूम चला कि बच्चा आ गया उसको लगा बच्चा नहीं काल आ गया, साक्षात मृत्यु है ना, वो तो देख रहे मेरी मृत्यु है। और देवकी का हम चरित्र देखेंगे कि देवकी का अपना पुत्र सुरक्षित है फिर भी देवकी के हृदय में कितनी करुणा है। तो देवकी का चरित्र और कंस का चरित्र और फिर कैसे कंस के चरित्र से आज का समाज भी कंस की ही पद चिन्हों पर चलने का प्रयास कर रहा है, और हम इस परिस्थिति में क्या कर सकते हैं। तो कंस भोज वंश से है, और श्रील प्रभुपाद जी इसी दशम स्कंद के पहले अध्याय के आचार्यों की टीकाओं को देखते हुए बताते हैं कि भोज का अर्थ होता है जो इंद्र तृप्ति में रत रहते हैं, है ना, और भोज का दूसरा अर्थ होता है जो हमेशा लड़ते रहते हैं। तो कंस भोग की प्रवृत्ति का था, जो भोग की प्रवृत्ति रखेंगे तो द्वेष उत्पन्न होता है। देवकी भगवान के नित्य सिद्ध भक्त है, भगवान से प्रेम, और वो भगवान की सेवा में रत है, तो सेवा से प्रेम की ओर बढ़ते हैं, भोग से हम द्वेष की ओर बढ़ते हैं। ये दोनों चरित्र हैं यहाँ पे, कंस और देवकी, और इन दोनों चरित्रों से हम देखेंगे कि प्रेम और द्वेष के क्या क्या लक्षण हैं। और इस संसार में हम साधक लोग हैं, भगवत धाम जाने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे हृदय में प्रेम भी अंकुरित होने का प्रयास कर रहे हैं हम, और कई जन्मों से इस संसार में है, द्वेष भी है, तो देखेंगे हमारे अंदर कौन कौन से कंस के भी लक्षण हैं और देव की माता के भी लक्षण हैं, प्रेम के लक्षण भी हैं और द्वेष के लक्षण भी हैं। तो पहले हम देव की माता के प्रेम के लक्षणों की चर्चा करते हैं। देव की माता कह रही है कि इस बेटी को मत मारो, बहुत कातर भाव से, हालांकि वो जानती है कि मेरा पुत्र सुरक्षित है। तो ये दिखाती है देवकी की करुणा, एम्पैथी एंड कंपैशन, है ना। अब एम्पैथी को हिंदी में क्या कहेंगे, मैं प्रॉपर शब्द ढूंढ नहीं पाया। एक होती है सिंपैथी, सिंपैथी बोलते हैं इसको सहानुभूति, लेकिन सिंपैथी से भी अच्छी होती है एम्पैथी। सिंपैथी में अगर किसी के ऊपर कोई दुख आया तो हम उस दुख को समझ, उसको फील करते हैं, किसी के घर में मृत्यु हो गई, बोले हाँ हाँ बहुत बुरा होगा, कुछ आंसू बहा देंगे। लेकिन एम्पैथी में क्या होता है कि व्यक्ति उसके मतलब उसकी स्थिति में जाके उसकी मानसिक और उसकी इमोशनल स्थिति को समझता है, उसकी फीलिंग्स को समझता है पूरे अच्छे ढंग से, यानी कि पुटिंग वन सेल्फ इन अदर्स शूज, है ना, पूरे अच्छे ढंग से समझता है। तो ये ज़्यादा शक्तिशाली है, और जिसको एम्पैथी होगा फिर उसके अंदर करुणा का ये लक्षण है, तो उसके लिए कुछ करता भी है। तो देवकी के हृदय में एम्पैथी हो रही है, उसकी संतान नहीं है ये, लेकिन क्योंकि वो अपने 6 बच्चों को पहले खो चुकी है, अपने सामने उसने अपने आप कंस को उसका वध करते हुए देखा है, तो देवकी समझ सकती है कि जब कोई अपने बच्चे को बच्चा खोता है तो उसको क्या पीड़ा होती है। तो वो यशोदा के लिए बहुत पीड़ा अनुभव कर रही है कि उसकी पुत्री का वध किया जाएगा। तो देवकी की ये एम्पैथी है, ये प्रेम का लक्षण है। जिसके हृदय में जितना भगवान के लिए प्रेम होगा उसके हृदय में उतनी ही ज्यादा करुणा होगी, उतने ही ज्यादा वो दूसरों के दुख को समझ पाएगा। भगवान गीता के 6 अध्याय के 31 या 32 श्लोक में बताते हैं, आत्म उपेन सर्वत समम पश्यति अर्जुन, सुखम सुखम वा यदि वा दुखम सा योगी परमो मतः। आत्म उपमेन, अपनी तरह सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, जो सबको यही देखता है, सबके अंदर जो मेरे अंदर घट रहा है वो दूसरों के अंदर भी घटता होगा, है ना। सुखम वदि सुखम वा यदि वा दुखम, उनका जो सुख हो या दुख हो उसको अपने और सुख के दुख से तुलना करता है। सा योगी परमो मता, वो सर्वश्रेष्ठ योगी है। ये भगवान एम्पैथी बता रहे हैं। ये एम्पैथी क्या होता है, दूसरों के सुख और दुख को अपने ही सुख और दुख के समान समझना, है ना। तो उसको वो समझ पा रही थी, तो इसलिए उसने कहा नहीं इसका वध मत करो। और जितनी मात्रा में आध्यात्मिक उन्नति होगी उतनी मात्रा में हमारे अंदर ये लक्षण होंगे। और देवकी ऐसे हम देखते हैं कि साधारणतया स्त्रियों में एक दूसरे के प्रति एक स्पृधा की भावना होती है ना। हम महाभारत में देखते हैं गंधारी, गंधारी बहुत तपस्वी थी, सती स्त्री थी, उसके पति धृतराष्ट्र बचपन से ही अंधे थे, तो उसका विवाह उसने आंखों में पट्टी बांध ली, जब मेरे पति नहीं देख सकते तो मैं क्यों देखूं, इतनी तपस्या इतना सतीत्व। लेकिन कुंती के साथ उसका द्वेष था, स्पृधा थी, और जैसे मालूम चला कि कुंती ने पहले युधिष्ठिर को जन्म दे दिया, गांधारी भी गर्भवती थी, इतना द्वेष हुआ, उसने अपने गर्भ को पीटा और फिर उसका गर्भ में से मांस का लोथा निकला, जिसको व्यासदेव जी ने 100 टुकड़ों में बांट के फिर 100 पुत्र उत्पन्न हुए। तो गांधारी इतनी तपस्वी होते हुए भी अपने द्वेष को रोक नहीं सके। अगर किसी के हृदय में कृष्ण के लिए प्रेम होगा तो दूसरे के सुख में उसको सुख होगा, दूसरे के दुख में उसको दुख होगा, है ना। ठीक है, अगर कुंती ने पुत्र को उत्पन्न दे दिया उसको खुशी होनी चाहिए थी, नहीं, स्पृधा थी तो उसको द्वेष हुआ। तो हम ये देख सकते हैं अपने जीवन में किसी भक्त के को उन्नति करते हुए देखे हुए हमें कितना दुख होता है या कितना सुख होता है ना। कई बार जब किसी का दुख होता है तो हमें थोड़ा सा आश्वासन मिलता है, चलो मैं तो सुखी हूँ, है ना, कोई बात नहीं। कई बार ऐसे बहुत बड़ा फेस्टिवल हो, आपने तो पूरी फीस्ट पाली आराम से, बाद में एक भक्त आया उसको कुछ नहीं मिला, ओहो कुछ नहीं मिला, कोई बात, चलो मुझे तो मिल गया, बढ़िया है ना, है ना। वो हम देख सकते हैं कैसा हमें महसूस होता है उस समय। तो कहीं मेरे ऊपर से हम बोले हाँ बहुत बुरा हुआ, लेकिन अंदर से हम सोच रहे चलो ठीक है मैं तो बच गया, ऐसा हो गया। तो लेकिन देवकी की ऐसी भावना सुपरफिशियल फीलिंग्स नहीं थी, बहुत गहराई से वो ये पीड़ा अनुभव कर रही थी। इसी ढंग से हम देखते हैं द्रौपदी, अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों का रात को सोते हुए वध कर दिया, और द्रौपदी ने शपथ ली कि जब तक आप अश्वत्थामा का सर नहीं लाओगे, उसके सर पे खड़े होकर मैं तर्पण नहीं करूंगी, ये बाल नहीं बांध दूंगी, ऐसा। और अर्जुन ने भी शपथ ली मैं ऐसा करूंगा लाऊंगा, और जब वो गए और अश्वत्थामा को पढ़ के लाए और सब कह रहे मार दो इसको, फिर द्रौपदी ने कहा नहीं इसको मत मारो, कृपी जो उसकी माँ है उसको कैसा अनुभव होगा, मैंने अपने 5 पुत्रों को खोया है, अगर कृपी का भी पुत्र जाएगा उसको कितना दुख होगा। तो क्या चरित्र है, मतलब तो जिसके हृदय में जितना कृष्ण के लिए प्रेम होगा उसके हृदय में उतनी ही करुणा होगी, उतना ही दूसरों के जीवों के दुख और सुखों को समझ पाएगा, और उसके लिए वो प्रयास करेगा उन दुखों को दूर करने के लिए। इसी ढंग से हम देखते हैं भागवतम के 9वें स्कंद में रंती देव जी, है ना, 48 दिनों का निर्जला व्रत, 48 दिन, एक दिन नहीं 48 दिन, और उसके बाद बढ़िया उनके सामने पकवान आए, पेय पदार्थ आए, जैसे वो पीने लगे ब्राह्मण आ गया, मुझे बहुत भूखा हूं कुछ दो, आधा उसको दे दिया, फिर एक चंडाल आ गया, फिर एक पशु आ गया, सब कुछ बांट दिया। ये सारे देवतागण थे उनकी जो परीक्षा करने आए थे, तो कितना हृदय में उनके लिए करुणा थी, एम्पैथी थी कि हाँ ये व्यक्ति भूखा है, मैं भी भूखा महसूस कर रहा हूँ, इसको कैसा लग रहा हूँ, अपना पानी अपना सब कुछ भोजन उसको दे दिया। इसीलिए सभी धर्मों में हम देखते हैं, चाहे वो ईसाई धर्म हो या इस्लाम हो या हमारा सनातन धर्म हो, हर एक धर्म में बताया जाता है कि आप उपवास रखिए, फास्टिंग कीजिए, क्योंकि फास्टिंग करके एक उद्देश्य ये भी है कि हमारे हृदय में करुणा उत्पन्न हो उन लोगों के लिए जो जिनको खाना भी नहीं मिलता प्रतिदिन, है ना, कुछ करुणा उत्पन्न हो, देखें भूखे रह के प्यासे रह के कैसा महसूस होता है, और फिर ऐसे भूखे प्यासे लोगों के प्रति हमारे हृदय में हमारा हृदय कोमल हो। लेकिन हम तपस्या को सही चेतना से नहीं करेंगे तो हमारा हृदय कोमल होने की जगह क्या होता है, कठोर हो जाता है। तो देवकी के हृदय में कृष्ण के लिए प्रेम था, इसलिए सारे लक्षण वो दिखा रहे थे। दूसरा हम देवकी का गुण देखते हैं, उसके अंदर हृदय में प्रेम है, विनम्रता, बहुत विनम्रता थी। विनम्रता जो ये करुणा है ये बिना विनम्रता के आ ही नहीं सकते। विनम्रता, विनम्रता का अर्थ ये है कि देवकी ऐसी विषम परिस्थिति में भी अपने लिए नहीं सोच रहे थे, वो यशोदा के लिए सोचे थे जिसकी ये पुत्री थी। और विनम्रता के अक्सर लोग ये बोलते हैं, हम बोलते हैं लोगों को तिना देवी सुनी चैन, तो लोग बोलते हैं प्रभु जी कुछ प्रैक्टिकल होना चाहिए, कोई एक्शन भी तो करना चाहिए, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन भी तो लेना चाहिए। तो विनम्रता का मतलब कोई निष्क्रियता नहीं है, खाली बैठना नहीं है कि जो हो रहा होने दो, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, वैसी झूठी विनम्रता अर्जुन गीता के पहले अध्याय में दिखा रहा था, और जब उसने युद्ध करना शुरू किया तो असली विनम्रता दिखा रहा था, है ना, क्योंकि अर्जुन के द्वारा छोड़े हुए बाण से सभी के सभी कौरव के जो सैनिक है वैकुंठ धाम में चले गए, और पहले अर्जुन कह रहा था नहीं नहीं मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं जंगल में चला जाऊंगा, किसी का भी उद्धार ना होता, ना उसका उद्धार होता ना कौरव सैनिकों का उद्धार होता। तो विनम्रता का अर्थ होता है डायनामिज्म, एक्शन, क्या गुरु साधु शास्त्रों के अनुसार। तो देवकी ने अपनी विनम्रता दिखाई, विनम्रता में उसने क्या किया, पूरा प्रयास किया इस बच्ची को बचाने के लिए। और प्रभुपाद कह रहे हैं कि वो क्षत्रिय खानदान से थी, और क्षत्रिय सारे दाव पे जानते हैं, दाम साम दंड भेद सब, और देवकी ने सब कुछ लगा दिया इस बच्ची को बचाने के लिए। पहले तो बोला उसने, आप देखते हैं कोई भी नेगोशिएशन करने हो तो पहले दूसरे व्यक्ति को दबाया जाता है ना, तो पहले उसने हंस को दबाना चाहा, तूने पहले से ही मेरे 6 बच्चों को मार दिया द्वेषवश, है ना, दाम उसको दबाया, उस पर अटैक किया, बोला ये फिर भी नहीं माना तो फिर शाम चलो कंप्रोमाइज करते हैं, उसको शांत किया, देखो कोई बात नहीं तुम्हारा दोष नहीं था, भाग्य था, विधाता था, मेरे 6 बच्चों को मरना ही था, कोई बात नहीं, फिर भी नहीं माना, फिर नीचे आ गए दान, चलो ये पुत्री दान में ही दे दो, है ना, ना तुम दाम से मान रहे हो ना शाम से मान रहे हो, दान में। तो पूरा प्रयास किया उसने कि ये बच्ची बच जाए, हालांकि वो बच्ची उसकी नहीं थी, उसका पुत्र कृष्ण जो है सुरक्षित है। तो ये विनम्रता है। और हम देखते हैं भागवतम में अन्य स्थानों में भी रुक्मणी जी है ना, रुक्मणी जी ऐसी विषम परिस्थितियों में थी, बहुत ही कोमल बालिका थी और उनके भाई रुक्मी ने उनका विवाह शिशुपाल से कर दिया। वो छोटी सी बालिका क्या करेंगे, सारे विवाह की तैयारियां हो रही हैं, लेकिन उनकी विनम्रता थी। विनम्रता में भक्त हमेशा उत्साहित रहेगा, विषम परिस्थितियों में भी उतना इतना साहस दिखाया, कृष्ण को पहला प्रेम पत्र लिखा, इस सृष्टि का पहला लव लेटर, और ब्राह्मण को भेज दिया जाओ, और उसमें पूरी योजना बताई, क्योंकि क्षत्रिय की संतान थी वो, मैं जाऊंगी दुर्गा के मंदिर में, इस समय तुम आना और मुझे अपहरण करके ले जाना, तो सारा पूरा योजना बना के भेजी। तो वहां भी शिला प्रभुपाद प्रभुपाद जी के शिष्यगण तात्पर्य में रखते हैं, क्योंकि वो क्षत्रिय की संतान थी। और हम देखते हैं महाभारत में, रामायण में, हर जगह युद्ध से पहले ये प्रयास किया जाता है कि युद्ध को रोका जाए, साम उसको कंप्रोमाइज किया जाए, रोका जाए। भगवान कृष्ण स्वयं शांति दूत बनकर आए, लेकिन दुर्योधन ने बात नहीं सुनी। इसके साथ भगवान राम ने भी रावण से युद्ध करने से पहले बहुत से प्रयास किए, अंगद को भेजा कि युद्ध रुक जाए, लेकिन रावण ने नहीं माना। तो ये क्षत्रियों का ये साम दाम दंड भेद किसी न किसी ढंग से युद्ध को रोकने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार से जब प्रचारक या भक्तगण प्रचार करने जाते हैं तो पूरा प्रयास करना चाहिए। शिला प्रभुपाद कहते हैं कि प्रचार का अर्थ है अनफेवरेबल को फेवरेबल बनाना, इतना प्रयास करो। और प्रभुपाद जी ने अपने जीवन से दिखाया, प्रभुपाद के लिए जीवन में हर अनफेवरेबल परिस्थितियां थी, लेकिन पूरा प्रयास, यही विनम्रता है, पूरा प्रयास करें और फिर परिणाम के लिए भगवान की कृपा पर निर्भर। प्रभुपाद जी एक बार मॉर्निंग वॉक में ऑस्ट्रेलिया में पर्थ में थे, तो प्रभुपाद अक्सर अपने भक्तों के से ज्ञान की परीक्षा लिया करते थे। प्रभुपाद ने अपने भक्तों से पूछा, एक भक्त विनम्र हो, एक भक्त सरल होता है कि क्रुकेट होता है, सिंपल और क्रुकुट, क्रुकेट मीन्स क्या बोले, कपटी है ना। भक्तों ने उत्तर दिया, सरल ही होता है भक्त। प्रभुपाद द्वारा पूछा, आर यू श्योर भक्त सिंपल होता है कि क्रुकेट होता है? प्रभुपाद, ही इज श्योरली सिंपल। प्रभुपाद नो, आर डिवोट इज क्रुकेट। सब हैरान हो गए, ये तो सारी शिक्षाओं के विरोध में है। प्रभुपाद कहते, डिवोटी इज क्रिकेट, डिवोटी बहुत ट्रिक्स करता है, आई ट्रिक्ड ऑल ऑफ यू, मैंने आप सबको ट्रिक कर दिया, आप सब व्यभिचार कर रहे थे, ड्रग्स ले रहे थे, मांसाहार कर रहे थे, मैंने आया आपका सब कुछ छुड़वा दिया और आपको कृष्णा भावना भावित बना दिया, ये मैंने आपको ट्रिक किया है ना। तो ये वास्तव में प्रभुपाद ने ट्रिक किया सबको, हम सबको भी ट्रिक किया प्रभुपाद ने, कैसे सबको छुड़वा दिया। तो इसलिए इन हिप्पियों ने कभी सोचा भी नहीं होगा, ये बूढ़ा व्यक्ति पिछड़े हुए देश से भारत से आया है ना, ये क्या हमें कर ले। वो सोचते होंगे चलो बढ़िया संगीत गाते हैं, साथ में संगीत गा लेते हैं, कुछ खाने पीने को देते हैं, खा पी लेते हैं, बढ़िया और क्या, हमारा काम चल रहा है। लेकिन प्रभुपाद बहुत इंटेलिजेंट थे, सबको ट्रिक कर दिया। कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है, भक्त लोग आते हैं, हमें पता भी नहीं चलता, बढ़िया यहाँ चावल सांभर मिलता है, बढ़िया खाएंगे, आओ आओ कोई बात नहीं, आओ खूब खाओ खूब खाओ, और फिर पता भी नहीं चलता है ना, 3 महीने के बाद सड़क पे खड़ा होता, किताब बेच रहा होता है। क्या हुआ, चावल सामर अंदर गया और पता नहीं क्या हो गया, ट्रिक हो गया सब है ना। इसलिए भक्त लोग इस दया को, कृपा को बांटने के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। प्रभुपाद किसी भी हद तक चले गए, कितने कष्ट उठाए प्रभुपाद ने, 2 हार्ट अटैक समुद्री यात्रा में 70 साल की उम्र में, किसके लिए, हमारे लिए गए वहां पे, हम सब पे कृपा करने के लिए। तो ये विनम्रता है, देवकी ने अपनी विनम्रता दिखाई। तीसरा उनका जो प्रेम का लक्षण है, भगवान पे पूर्ण विश्वास है ना, पूरा भगवान की कृपा पे पूर्ण विश्वास। कैसे, जब उनका साम नहीं, दाम नहीं चला, साम नहीं चला, सॉरी साम में आई कि सबके सब विधाता का दिया हुआ है ना। आप सोचिए जिसके 6 नवजात शिशु पैदा होते ही एक के बाद एक उनकी आंखों के सामने जिसका वध कर दिया जाए क्रूरता से, क्या उसकी स्थिति रहेगी कि भगवान मेरे साथ क्या कर रहे हैं, है ना। भागवतम के 6ठे स्कंद में राजा चित्रकेतु और कीर्त्यद्युति का पुत्र हुआ हर्षशोक, और उसको बाकी सब रानियों ने जहर पिला दिया। तो दोनों ने इतना विलाप किया, राजा चित्रकेतु और उसकी छोटी रानी कीर्तिदुति ने, और बोलते हैं विधाता छोटा बच्चा है क्या, विधाता को मालूम नहीं सृष्टि कैसे चलानी है, हमारे सामने छोटे बच्चे का वध कर दिया, क्या है विधाता को बुद्धि नहीं है, बच्चा है। तो किसी भी भक्त के जीवन में थोड़ी सी व्यथा आती है, भगवान से विश्वास उठ जाता है। छह छह पुत्रों का वध अपनी आंखों के सामने, फिर भी वो कह रही है नहीं ये मेरे भाग्य में था, ये भगवान पे पूरा विश्वास, ऐसी विषम परिस्थितियों में भी है ना। और प्रभुपाद एक भागवतम के पहले स्कंद के पांचवें अध्याय का 18वां श्लोक है, तस्य हेतु प्रतीत कोविदो न लभ्यते यद भ्रमताम प्रदा तल लभ्यते दुखमन्यत सुखम काले न सर्वत्र गभीर रहंसा। असली बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो इस संसार में वो चीज प्राप्त करना चाहता है जो इस संसार में मिले नहीं, ऊपर से लेकर नीचे के लोगों तक, आउट ऑफ द वर्ल्ड लेगा। क्या आउट ऑफ द वर्ल्ड है? कृष्ण प्रेम, गोलोक प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, उसको लेगा। तो कोई बोलेगा अगर पूरा दिन वो यही प्रयास करता रहे कि मुझे कृष्ण प्रेम चाहिए, तो भैया संसार में मूर्ख बन जाएगा, वो कुछ नहीं मिलेगा इस संसार में। बोले नहीं, तल लभ्यते, जो इस संसार में मिलना है वो तो मिल ही जाएगा। दुख व अन्यता सुखम, जैसे बिना बुलाए दुख आ जाता है, सुख भी अपने कोटे के अनुसार मिल जाएगा, उसकी तो चिंता करनी नहीं चाहिए। प्रहलाद महाराज भी ये बोलते हैं तत् प्रयासो न कर्तव्यम, इस संसार की परिस्थिति को बदलने के लिए तो प्रयास करना मूर्खता है, वो तो वैसे की वैसे ही रहेगी। सूर्य ने अपने समय पर उदय होना है, अपने समय पर ही उदय होगा। भक्ति स्नान से उठा कुमार उदाहरण देते हैं कि कुछ वैज्ञानिक लोग थे, बोले सूर्य कैसे सुबह उठते हैं, हम अभी रात को लेकर आएंगे। बड़ी बड़ी टॉर्च लाइट लेकर सब खड़े हो गए और बाकी सब उत्साह बढ़ाने, लाओ जी लाओ सूर्य को लाना ही है, बड़ा अच्छा प्रयास कर रहे हो। लगे रहे पूरी रात प्रयास करते रहे, अपने आप सूर्य उदय का समय, सूर्य उदय हो गया। बोले वाह वाह वाह, देखो सबने टॉर्च मारी तो सूर्य उदय हो गया। ये भौतिकवादियों का सबका ये मानसिकता है, जो सुख है जो दुख है वो तो होगा ही होगा। हमारे जीवन में कितना सुख है, कितना दुख है, कितना यश है, कितना अपयश है, कितना लाभ है, कितनी हानि है, ये सब ऑलरेडी फिक्स्ड है। इसी के पीछे तुम भागते हैं, हानि को लाभ में, अपयश को यश में, दुख को सुख में बदलने के लिए। वो नहीं बदलेगा, जितना कोटा है उतना ही प्राप्त होगा। तो क्या फिक्स नहीं है, इन परिस्थितियों में हमारा क्या रिस्पॉन्स होगा वो फिक्स नहीं है। तो देवकी के ऊपर इतना कष्ट आया, दुख आया, उसका क्या रिस्पॉन्स था? ये कह रही नहीं, ये तो मेरे भाग्य में है। तत्ते अनुकंपा सुस्मिक्षमाना भुंजनिवात कृतम विपाकम हिदवाक मनोभि विद्धा नमस्य जीवित यो मुक्तिपात से दया भाग, कि जो भी मेरे जीवन में सुख और दुख आता है मेरे पूर्व जन्म कर्मों के अनुसार है, और ये तो भगवान की विशेष कृपा होती है कि मेरे दुख कम कर दिए। देवकी ये सोचिए मेरे दुख कम हो गए, बड़े और दुख थे। तो ये सही सोच है, जब हमारे जीवन में कोई कष्ट आए तो इसका मतलब चाहिए कि ये सिग्नल है कि हम भगवान की और तीव्रता से शरण ग्रहण करें, है ना। और ये एक एक सिम्टम है, एक सिग्नल है, और शरण में जाओ, गहराई से हरिनाम की, भगवान की, भागवतम की शरण में जाओ। जो अच्छा भक्त होगा, जो उसको भगवान में पूर्ण विश्वास है, वो जानेगा कि मेरे जीवन में जो भी घटित हो रहा है इसके मुख्यतः तीन कारण होते हैं। उसके एक को बोल सकते हैं प्रत्यक्ष इमीडिएट कारण, एक को रिमोट इनडायरेक्ट कारण, और तीसरा एक अल्टीमेट जो कि भगवान है। इमीडिएट वो है, प्रत्यक्ष वो जिसके कारण मुझे अपने कर्मों का फल मिलता है ना। किसी ने हमें धोखा दे दिया, किसी ने हम पर आक्रमण कर दिया, हमारे लिए अपयश फैलाया, वो इमीडिएट कारण है। वो तो केवल एक उपकरण है हमारे कर्मों के फल देने का। और रिमोट क्या है? मेरे कर्मों का फल। और अल्टीमेट क्या है? सैंक्शन किसने किया? कृष्ण ने। बस तो ये समझ जाएंगे तो हम कोई किसी पे आरोप नहीं लगाएंगे। भक्ति में हम कितने उन्नत हैं ये देखेंगे कि हम कितना किस पे आरोप लगाते हैं। परम पूज्य भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज की पुस्तक में लिखा कि मालूम चले हम कितने विनम्र हैं। कैसे मालूम चलेगा? बोले कि कितने लोगों के प्रति हम शत्रुता का भाव रखते हैं, कितने लोगों को मानते हैं कि ये मेरा शत्रु है। भक्त, प्रभुपाद लिखते हैं अपने 12वें अध्याय के गीता के 12वें अध्याय के तात्पर्य में, भक्त अपने शत्रु का भी शत्रु नहीं होता। डिवोट इज नॉट द एनिमी ऑफ हिज एनिमी। भक्त किसी को भी अपना शत्रु नहीं मानता। हो सकता है दूसरे लोग उसको अपना शत्रु मानते हो, लेकिन भक्त को किसी को भी अपना शत्रु नहीं मानना चाहिए। ये विनम्रता का लक्षण है। अगर हम बोले नहीं ये जीव मेरे अगेंस्ट है, ये भी मेरे से शत्रु का भाव रखता है, ये भी शत्रु है, ये भी शत्रु, इसका मतलब हमारा अहंकार बहुत बड़ा हुआ है। तो देवकी कंस को अपना शत्रु नहीं मान रहे थे, देवकी कह रही थी ये तो मेरा भाग्य था जो मेरे 6 पुत्रों ने जाना था तो चले गए। तो इस प्रकार से हमने देखा कि देवकी के ये 3 मुख्य गुण प्रेम के लक्षण, पहला था क्या, एम्पैथी और कंपैशन, दूसरा था विनम्रता और तीसरा था उसका भगवान में पूर्ण विश्वास। अब देखते हैं कंस को। कंस बिल्कुल विपरीत चरित्र, द्वेष से भरा हुआ, और उसके द्वेष का मुख्य कारण है स्वार्थ, सेल्फिशनेस, है ना। ईश्वरो हम अहम भोगी, सिद्धो हम बलवान सुखी, मैं ईश्वर हूं, मैं भोगी हूं, मैं इस संसार में सुखी रहने के लिए आया हूं, इस संसार में सारे जो लोग हैं मेरी इच्छाओं की पूर्ति के लिए है ना, ये स्वार्थ की भावना उसके अंदर है ना, भोग करने की वृत्ति। और विशेष बात यह है, देवकी बोल रही है ये जो 6 पुत्रों को आपने मारा ये तो मेरा भाग्य था, वास्तव में एक कंस का भी भाग्य था, क्योंकि 6 पुत्रों का इतिहास क्या है, ये वास्तव में पहले मरीचि के पुत्र थे, इन्होंने ब्रह्मा जी के प्रति अपराध किया और उसके कारण ये असुर योनि में गए, हिरण्यकश्यप के पौत्र बने और इनके पिता का नाम था कालनेमि। हिरण्यकश्यप के ये पौत्र थे, 6 बेटे, इन्होंने हिरण्यकश्यप से अलग होकर ब्रह्मा जी की तपस्या की और ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, बोले क्या चाहिए, बोले हम किसी के द्वारा ना मारे जाएं, कि ना किसी देवता से, ना पुरुष से, मनुष्य से, ना सिद्ध व्यक्ति से, ना किसी भी लोक के व्यक्ति से, ना कोई हमें रोग सताए, हमारी मृत्यु ना हो। जब ये बात हिरण्यकश्यप को मालूम चली वो बहुत क्रोधित हुआ, मेरी शरण को त्याग के तुम ब्रह्मा जी की शरण में गए, ये असुर स्वभाव होता है, उसको खुद सारे वरदान ब्रह्मा जी से मिले और बोले मेरी शरण छोड़ के ब्रह्मा जी के पास जा रहे हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारे अंदर इतना अहंकार बढ़ गया, मेरे को छोड़ के कहीं और जा रहे हो, तुम्हारा वध तुम्हारे पिता ही करेंगे अगली योनि में, है ना। तो ठीक है, यही कालनेमि आगे कंस बन के आया, तो ये बिल्कुल विधाता का ही था, अपने ही पुत्रों को वो मार रहा था, एक एक करके उसने 6 पुत्रों को मारा, तो उसके अंदर ये भोग की इच्छा थी, द्वेष था, जितना हम भोग की इच्छा रखेंगे उतना द्वेष। और प्रभुपाद भगवान गीता के 16वें अध्याय में बताते हैं कि असुरों को पता ही नहीं होता क्या करना है क्या नहीं करना, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना ना विदुरासुर ना शोषम नापि चाचारो ना सत्यम तेषु विद्यते, क्या ठीक है क्या गलत है क्या शुद्धता है कुछ नहीं मालूम, क्या शास्त्रों के आदेश हैं कुछ नहीं मालूम, उनको केवल क्या है अपनी इंद्र तृप्ति में रुचि बस, और जो इंद्र तृप्ति में सहयोग दे दे वो उनका मित्र है, जो इंद्र तृप्ति में सहयोग ना दे वो उनका शत्रु है। देवकी से इतना प्रेम कर रहे थे, जैसे मालूम चला इसकी 8वीं संतान आपकी मृत्यु का कारण बनेगी, वो देवकी का वध करने को भी तैयार हो गया, तो ये आसुरी स्वभाव है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो लोग बहुत इंद्र तृप्ति में रप्त होते हैं उन पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता, वो कभी भी पलटी मार सकते हैं। ये कंस ने पलटी मार दी बिल्कुल, जब पहला पुत्र हुआ था वसुदेव को देवकी का, वो उसको ले गए, उन्होंने नहीं 8वां पुत्र होगा ले जाओ, लेकिन जब बाद में उसके काउंसलर्स ने मिनिस्टर्स ने समझाया क्या कर दिया मूर्ख ऐसा नहीं, और फिर बोले ठीक है दोबारा से जेल में डाल दिया। तो प्रभुपाद वहां लिखते हैं कि जो इंद्र तृप्ति में रक्त असुर होते हैं उनकी बातें कभी विश्वास नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से, और दूसरा कि जब ऐसा व्यक्ति इंद्र तृप्ति के नशे में पागल होता है वो किसी के उपदेश नहीं सुन सकता, है ना। प्रभुपाद लिख रहे हैं उपदेश ही उपदोषो ही मूर्खानां प्रकोपायना शांतये, किसी के उपदेश काम नहीं करेंगे। जैसे कि हम देखते हैं भागवतम के 4 स्कंद में वेण जो अंग के पुत्र थे और पृथु महाराज 19 बाद में आए, तो वेण इतना क्रूर राजा था, बचपन से जब वो खेलने जाता था तो खेल खेल में ही बच्चों को हत्या कर देता था, उसका पास टाइम था बच्चों की हत्या करना, इतना क्रूर था वो। और जब अंग उसको समझा के थक गए तो रात को अंग वैसे ही चले गए, उन्होंने सोचा भगवान ने सही दिया ऐसा पुत्र, मेरे हृदय में जल्दी वैराग्य आ गया, घर छोड़ो भागो यहाँ से, वो चला गया छोड़ के। और ये वेण को बाद में राजा बनाना पड़ा और इसने सारे यज्ञ बंद करा दिए, ब्राह्मणों पर अत्याचार किए, तो सभी ब्राह्मणों ने इसको राजा बनाया था, बोलो जाके इसको थोड़ा समझाते हैं। ब्राह्मण ने बोला देखो यज्ञ करने दो आपका उद्धार होगा, तो वेण ने बोला तुम जानते नहीं हो, बच्चों की तरह बात कर रहे हो, सारे इंद्र चंद्र ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे ही शरीर में है, मेरी पूजा करो, तुम मेरी पूजा नहीं करे तुम्हारी हालत एक असती स्त्री की तरह है, तुम वैश्या के समान हो, मुझे छोड़कर विष्णु की पूजा कर रहे हो, जब ये सब सुना तो सब ब्राह्मणों को बहुत क्रोध आया, बोले मूर्ख व्यक्ति है ना, इसको हम समझा रहे हैं तो उल्टा चल रहा है। इसी प्रकार से दुर्योधन को बहुत समझाया विदुर ने, लेकिन विदुर के ही अपमान करके दुर्योधन ने उनको बाहर निकाल दिया। तो जब भी किसी मूर्ख व्यक्ति को बताएंगे वो सुनेगा नहीं। भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर हमारा उदाहरण दिया करते थे, एक बच्चा है छत पे पतंग उड़ा रहा है और पतंग उड़ाते उड़ाते छत से नीचे गिरने वाला है, किसने जाकर उसको रोक दिया, अरे क्या कर रहे हो, तो उस पर गुस्सा करना है, अरे मैं पेचा काट रहा था सारा खराब करा दिया, सारी खेल बिगाड़ दिया, उस पर गुस्सा कर रहा है, ये नहीं धन्यवाद दे रहा कि आपने मुझे बचा लिया। तो ये मूर्खों लोगों की निशानी है। और आज के समाज में हम देखते हैं किसी को बोलते हैं मत करो, यहाँ लगो, डोंट पुश मी सो हार्ड प्रभु, आप जहाँ हो वहीं रहो, है ना, मैं जो कर रहा हूँ मुझे इसमें आनंद मिल रहा है, तुम्हें वही आनंद मिले, तो वो समझते नहीं है बात को। और श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि आज के समाज में लोग मनु संहिता का अपमान कर रहे हैं, उपहास कर रहे हैं, क्योंकि मनु संहिता में बताया गया है कि 5 जो लोग हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए, ब्राह्मण, स्त्री, वृद्ध, गाय और बच्चे। और स्त्रियां हालांकि ये बताया गया कि क्षत्रिय परिवार से भी होती हैं, लेकिन वो सारे दाव पेश जानती हैं, लेकिन कभी भी स्त्री को मुख्य शासक का पद प्रदान नहीं होता। प्रभुपाद जी शायद ये तात्पर्य 1976 के आसपास लिख रहे होंगे, और भारत में तब एक स्त्री शासक थी, तो प्रभुपाद बिल्कुल करंट अफेयर की बात लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, मनु संहिता के अनुसार बिल्कुल भी ये ठीक नहीं है। और आज के समाज में हम देखते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे उल्टी सीधी लोग बातचीत कर रहे हैं, काफ़ी प्रोटेस्ट हुए हैं जिसमें मनु संहिता की कॉपी को जलाया जाता है और बोला जाता है कि मनु संहिता को नकार दो। मनु संहिता मनु द्वारा लिखी हुई है, वैदिक ज्ञान है जो पूरे मानव समाज के लिए एक एक लॉ बुक है, कैसे हमें इस संसार में आचरण करना चाहिए, एक धर्मशास्त्र है ये, लेकिन फिर भी लोग आजकल इसकी अवहेलना करते हैं। और विशेषकर ये हमारा इतिहास बताता है, जिस समाज में स्त्रियों को आदर नहीं होता उस समाज में हमेशा उथल पुथल मची रहती है ना। महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? द्रौपदी का अपमान हुआ। पूरे के पूरे रावण के कुल का नाश क्यों हुआ? क्योंकि सीता माता का अपमान हुआ। इसलिए जहां पे नारी की पूजा होती है, वो क्या श्लोक है, रमनते तत्र देवता, वहां देवता लोग रमन करते हैं। लेकिन आज के समाज में स्त्रियों को मुक्ति देने के लिए नारी मुक्ति मोर्चा के नाम पे उनका और शोषण किया जा रहा है, इसलिए समाज में और ज्यादा उथल पुथल है, क्योंकि हम मनु संहिता के अनुसार नहीं चल रहे। तो बहुत ही दुख की बात है। एक बार मैं कानपुर में था तो देवकीनंदन प्रभु लेक्चर दे रहे थे भागवतम के 9वें स्कंद में पुरवा और उर्वशी के प्रसंग में, और उसमें ही स्त्री के लक्षणों कुछ वर्णन था। तो देवकीनंदन प्रभु ने कहा कि मनु संहिता के अनुसार स्त्रियां जो होती हैं पुरुष से ज़्यादा साहसी होती हैं, है ना, पुरुष से ज़्यादा मेहनती भी होती हैं और पुरुष से ज़्यादा साहसी भी होती हैं। और साहसी कैसे, उन्होंने उदाहरण दिया, स्त्रियों में इतना साहस होता है कि पुरुष के कपड़े डाल के घूम सकती हैं पुरुषों में इतना पुरुष ये साहस करके दिखाएं अगर पुरुष ये साहस करते हैं तो पता नहीं हमको क्या समझते हैं फिर हम, है ना। तो वास्तव में बहुत रियलाइजेशन बहुत लगी और आजकल जितना ज्यादा स्त्रियां पुरुषों के कपड़े डालते हैं उतना ज्यादा उनको अच्छा माना जाता है, मॉडर्न माना जाता है। और बोले पुरुषों ज्यादा मेहनती भी होती हैं और हम देख भी सकते हैं, पुरुष और स्त्री दोनों आजकल दोनों ही ऑफिस में जाते हैं, है ना, और वो स्त्री से अपेक्षा की जाती है घर का भी काम करे, पुरुष नहीं करेगा घर का वही काम करे, बच्चों को भी वही संभाले, स्कूल में कोई बच्चों की समस्या है वही पीटीएम में जाए, और पुरुष जो है बस थोड़ा सा ऑफिस से काम करके आता है, मैं इतना थक गया इतना परेशान हो गया, स्त्री सब कुछ करे, है ना। और यही आशा भी रखते हैं, किसी भी पूछो युवा से पूछो कैसी भक्त चाहिए आपको, लड़की कैसी चाहिए, वो पढ़ी लिखी भी हो, अच्छी कुकिंग भी जानती हो, अच्छा स्वभाव भी हो, पैसे भी कमा के लाए, बच्चों का भी ख्याल रखे, सास ससुर की भी सेवा करे, घर को भी साफ सुथरा रखे, रिश्तेदारों से बड़ा प्रेम करे, मतलब कि ऐसी परफेक्ट स्त्री, ब्रह्मा जी मना कर देंगे मैं बना ही नहीं सकता संभव ही नहीं, ऐसा मॉडल ही एग्जिस्ट नहीं करता तो क्या है, हम बेफजूल आज संसार की हालत क्यों है, लोग शास्त्रों की अवहेलना कर रहे हैं, लोग पूरा सरकार पब्लिक का पैसा व्यर्थ कर रही है चंद्रयान में। अगर भी भागवतम पढ़ेगा चंद्र में जा ही नहीं सकते हम, वो 1100 करोड़ आपने यहां दे दो, आप कितने मंदिर बन जाएंगे, कितना धर्म का प्रचार हो जाएगा। लेकिन इसको आध्यात्मिक इसको उन्नति माना जा रहा है, अंधाधुंध लोग पाश्चात्य देशों की नकल मार रहे हैं, तो बहुत प्रचार की आवश्यकता है। अंधाधुंध स्त्रियों के अंदर अश्लीलता आ रही है, उनको मदिरा पान कर रहे हैं, धूम्रपान कर रही हैं, उसको अच्छा माना जा रहा है कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम लिबरेट हो रहे हैं। लिबरेशन संसारिक इस संसार की प्रगति नहीं है, जितना हम यहाँ स्वार्थी रहेंगे यहाँ बंधे रहेंगे। मनुष्य जीवन मिला, प्रभुपाद कहते हैं परोपकार के लिए, मनुष्य जीवन इस संसार के बंधन से मुक्त होने के लिए मिला है, चाहे स्त्री का देह हो या पुरुष का देह हो। असली एम्पावरमेंट है कि भगवान की शरण लेना और इस भगवत धाम जाना और संसार से मुक्त होना, वो असली एम्पावरमेंट है। लेकिन संसार में कुछ फैसिलिटीज इकट्ठा करना वो एम्पावरमेंट नहीं है। पहले स्त्री घर में रानी रह के रहती थी, अब वो नौकरानी घूम के घूम रही है, तो बोलिए एम्पावरमेंट है। वो धक्के खा रही है रात दिन, इतना दुख होता है स्कूटीज में यहाँ वहाँ धक्के खा रही हैं, बोले एम्पावरमेंट है। पहले वो जो कहती थी उसके पति देव करना ही पड़ता था उसको, बस खाली डिमांड कर रही है बस, और उसको खुद कमाना है खुद करना है। तो ये बुरा मानने वाली बात नहीं है, इसके ऊपर बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन हम भक्तों को सही कल्चर प्रेजेंट करना चाहिए। भक्तों को भी एक हम भक्त के पास गए, दिल्ली के नहीं बाहर किसी गांव में थे, उनकी बेटी थी, बड़ी बहुत अच्छा है, देखो स्कूल में प्राइज मिला, ये मिला वो मिला, मैंने बहुत अच्छा है, आपका बेटा भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, सब सोलह माला करते हैं, अब आप भी अच्छी भक्ति बढ़े ही आगे। मैंने बस इस बेटी को कहीं लगाना, अच्छी जॉब मिल जाए इसको। गाँव गाँव में ये बात पहुँच गई है कि बेटी को पढ़ाना लिखाना है, क्यों, जॉब करवाने के लिए। ये संस्कृति मनु संहिता के अनुसार नहीं है। बच्चों को लड़कियों को ट्रेन करना चाहिए कैसे अच्छी माँ बने, कैसे अच्छी पत्नी बने, क्योंकि सबसे पहले गुरु बच्चे का क्यों है, माँ। आजकल स्कूल में काउंसलर्स हैं, बच्चों के काउंसलर रखे जाते हैं, काउंसलर सबसे पहला काउंसलर उसकी माँ है, उसको माँ से समय नहीं मिलता उसके लिए काउंसलिंग की आवश्यकता है। काउंसलर माँ का रोल थोड़ी ले सकता है, क्रच में जाके माँ का रोल थोड़ी हो सकता है। तो ये बहुत ही जिसे कहते हैं बहुत शोकजनक स्थिति है, इसमें समाज का उद्धार नहीं होगा। आर्थिक प्रगति चेतना की प्रगति नहीं है, असली प्रगति चेतना की प्रगति है। सब कुछ उन्नत हो भगवत धाम जाने के लिए, इसी संसार में नरक में जाने की उन्नति नहीं है। अच्छी गाड़ियां ले ली, अच्छा बंगला ले लिया, उससे गारंटी नहीं कि हम भगवत धाम जाएंगे, और उसके लिए क्या कुकर्म कर रहे हैं, नरक जा सकते हैं। तो ये पूरे समाज में हमें ये बहुत आवश्यकता है ज्ञान का प्रचार करने के लिए, और भक्तों को अपने परिवार के उदाहरणों से सिखाना चाहिए कि हम लोग सुखी हैं। क्यों सुखी हैं, हम शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन जी रहे हैं, हम आपकी कॉपी नहीं करेंगे। प्रभुपाद विदेश में वहां से सीखने नहीं गए, वहां सिखाने गए भारतीय संस्कृति को। तो इसलिए ये हमें भक्तों लोग भी कमजोर पड़ जाते हैं, दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, नहीं, लोग कहेंगे वाह कितना अच्छा घर है, कितना सुखी है ये, क्या शास्त्रों के अनुसार इनका क्या संस्कृति है। तो ये आजकल पूरे संसार में कंस के आसुरी मानसिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि कंस इतना क्रूर था, सांप से भी ज्यादा घातक। सांप को तो मंत्रों से नियंत्रण किया जा सकता है, लेकिन कंस को कौन से मंत्र से नियंत्रित किया जाए? आज के समाज में जो आसुरी मानसिकता फैल रही है उसको कैसे नियंत्रित किया जाए, कौन सा मंत्र है? तो मंत्र है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये संभव होगा भक्तों की कृपा से। प्रहलाद महाराज भागवतम के 5वें स्कंद के 18वें अध्याय में बहुत सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं, जिसमें सारे के सारे द्वेषी लोग शांत हो जाए। स्वस्तुवस्य विश्वस्य खला प्रसिद्धता ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथोदया मनाश्च भद्रं भजते दधोक्षजा आवेश्यताम् नामति अपि अहेतुकी। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य, पूरे विश्व का कल्याण हो, शुभ हो। कैसे? खला प्रसिद्धता, जो खल लोग हैं, जो द्वेषी लोग हैं, वो शांत हो जाएं। कैसे शांत होंगे? मनाश्च भद्रं भजता दधोक्षजे, वो अधोक्षज के अपने मन को भगवान के चरणों में लगाएं, फिर क्या होगा, सब जीव एक दूसरे के भले के बारे में सोचेंगे। और हे भगवान नरसिंह देव, मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि मेरी मति आपकी अहेतु की भक्ति में लग जाए। तो कैसे हम कर सकते हैं, लोगों को ये शिक्षा देके, पुस्तकों का वितरण करके, हरि नाम का वितरण करके, अपने जीवन शैली से सिखा सकते हैं लोगों को कि देखिए यही सही जीवन का आचरण है। ये आश्रित प्रवृत्ति को छोड़कर हम देवी संपदा को, गुणों को अपने अंदर विकसित करें और मनुष्य जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, क्वेश्चंस और कमेंट्स? यस सर।
धन्यवाद। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। जैसे वुमेन एम्पावरमेंट की बात की, इसमें क्योंकि बहुत ही ऐसा टॉपिक है और बहुत डिस्कशंस आते हैं, तो एक अक्सर जो डाउट मेरे माइंड में आता है कि मान लीजिए अगर कोई वुमेन का बहुत अच्छा करियर है और उनके जब वो बहुत से उस करियर के माध्यम से बहुत से लोगों को भी जोड़ते हैं, बहुत से डोनेशंस के कॉन्टैक्ट्स भी लाते हैं, कहीं ऐसे रोल्स पे होते हैं, ऐसे करियर पे होते हैं जिसमें वो इस्कॉन की भी बहुत अच्छे रूप से सेवा करते हैं, तो कभी कभार ऐसे मन में लगता है जैसे एक तरफ हमारा स्टैंड होता है कि इस तरह से कल्चर प्रेजेंट करें, और दूसरी तरफ होता है कि जब जहाँ पे अगर उनका ऐसा यूटिलाइजेशन है तो हम उनसे पूरी सर्विसेज भी लेते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे डुप्लिसिटी टाइप लगता है कि या तो फिर उनको ना लें या इसको किस पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए इसको।
थैंक यू फॉर सच ए नाइस क्वेश्चन। तो बिल्कुल ठीक बात है, जो हम कोई माता जी हैं और अच्छी पदवी पे हैं, अच्छी पोस्ट पे हैं, उसको हम भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो इसको आप कह सकते हैं बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन। अब ऑलरेडी वो हैं, अब हम उनको बोलेंगे सब छोड़ दो ऐसे आ जाओ, तो उनके लिए भी बहुत ही सडन चेंज होगा, वो कर भी नहीं पाएंगे। सो वॉट एवर बेस्ट भगवान की सेवा में लग सकते हैं उनको हम लगाते हैं, है ना। लेकिन अगर हम जो बच्चों को शुरू से प्रशिक्षा दे रहे हैं, शिक्षण दे रहे हैं, अब ये हमारे आइडियल नहीं होने चाहिए कि एक दिन उसको IAS ऑफिसर बनाना है, उसको बहुत बड़ा GM बनाना है, ये कराना है, ये हमारा प्रशिक्षण नहीं होना चाहिए। अब जो ऑलरेडी उस स्थिति में है उसका हम बेस्ट क्या कर सकते हैं भगवान की सेवा में, जो कुछ आपके पास काबिलियत है वो भगवान की सेवा में लगाओ, है ना, कर सकते हैं। और अगर उनका खुद की इच्छा है इसको छोड़ के वो एक साधारण जीवन बनाना चाहिए, दैट इज ऑल्सो वेलकम। और अगर हम ये नहीं कहते कि स्त्रियों को घर में बैठ के चुपचाप रहिए, नहीं, हर जीव का अधिकार है प्रचार करना, प्रचार में पूरा सहयोग दे, प्रभु जी और माता जी पूरे घर में मिलकर अच्छे ढंग से वातावरण लाएं, अड़ोस पड़ोस में खूब प्रचार करें, ये तो है ही है, ये थोड़ी खाली बैठना है, प्रचार करना है, तो वो उनका लाइफस्टाइल है, वो अगर इसमें अडॉप्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो जिस स्थिति में प्लीज उस स्थिति में तो सेवा में जुड़े। It's not duplicity, it's using everything in the service of Krishna.
Hare Krishna. Raji, just to add in this question, ki the purpose of the modern education is ki matlab success of the modern education is to get a job. Matlab jaise to kahin kahin lagta hai ki jaise itna padha liya, ab pad gaye, ab uske baad job nahi mili to phir it is waste.
Theek baat hai. Wo ek phir usme fas jate hain, apne hi jaal mein fas gaye. यही संसार की है ना, प्रभु महिला प्रहलाद महाराज कहते हैं ना, सोल्यूशन अपने आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाते हैं, तो सोल्यूशन था कि सबको पढ़ाना है जी, सरकार का देखिए बच्चे को लिखा होता है गांव गांव में, ससुराल नहीं पाठशाला, बच्ची को ससुराल ना भेजो, पाठशाला भेजो, पाठशाला में जाके उसका ज्यादा उद्धार होगा। ठीक है, भेजना चाहिए, नहीं कह रहे पाठशाला नहीं भेजना चाहिए, लेकिन बच्चियों को लड़की लड़की है, लड़का लड़का है, आलू आलू है, प्याज प्याज है, गाजर गाजर है, गाजर को आलू नहीं बना सकते, आलू को गाजर नहीं बना सकते, हर एक अपना टेस्ट है, हर एक अपना पर्पस है। सृष्टि में भगवान ने, ब्रह्मा जी ने स्त्री क्यों बनाई, पुरुष क्यों बनाया, पुरुष का अपना पर्पस है, स्त्री का अपना उद्देश्य है, उस उद्देश्य को हमने पूरा करना है, कैसे, मनु संहिता के अनुसार, एज सिंपल एज दैट, उसको हम कैसे क्यों नकारें। तो स्त्रियों की एजुकेशन अलग है, पुरुषों की एजुकेशन अलग है, उनका ट्रेनिंग अलग है, स्त्रियों का ट्रेनिंग अलग है। अब क्योंकि सब मिक्स कर दिया है, अब मैंने इतना मेहनत किया, इतना खर्चा किया, मैं यहाँ तक होंगे, अब क्या करूँ, जॉब भी करूँगे, अब एजुकेशन लोन लेके MBA किया तो एजुकेशन लोन उठाने के लिए जॉब करेंगे, जॉब करेंगे तो पूरा फंसता ही जाता है फिर चक्रव्यूह में, पूरा बेसिस ही खराब है ना। इसलिए अब जो स्थिति है उसको कैसे कर सकते हैं, अब उसको पूरा अनवाइंड नहीं कर सकते, जो जहां पे चलो इसको तो भगवान की सेवा में लगाओ, अब जो नया शुरू करेंगे वो तो ठीक करें, अब इस गुंजल में और गुंजल करते रहेंगे तो समाज में सब अस्त व्यस्त आ जाएंगे। नहीं
प्रभु जी, हरे कृष्णा, अगर ये स्त्री पुरुष की अलग एजुकेशन की बात ना करते हुए एक चाइल्ड एजुकेशन की और मॉडर्न एजुकेशन वर्सेस वैदिक एजुकेशन उसके विषय में पूछना चाहता था कि लड़कों के लिए भी ऐसा ही होता है और एग्जांपल क्या दिया जाता है कि जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी तिलक लगाकर जाया करते थे, ऐसा हमको ऐसा जनरेशन लेकर आना है, तो क्या ये कितने हद तक सही है? सोच तो कि वो अगर एक भक्त आईएएस बनेगा तो ज्यादा प्रचार होगा, मतलब तो इसलिए उनको मॉडर्न एजुकेशन दिलाना जरूरी है।
बिना मॉडर्न एजुकेशन दिए भी भक्तों के बच्चे इंजीनियर डॉक्टर आईएएस बन सकते हैं, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। हमें अपना एजुकेशन खुद शुरू करना चाहिए। आप सब जो कांग्रेगेशन के लोग हैं, भक्तों की मदद से हमें समय एक अच्छा स्कूल खोलना चाहिए जहां हम बच्चों को वैदिक संस्कृति अच्छे ढंग से पढ़ाएं, सिखाएं, उनका चरित्र पे ध्यान दें। चरित्र अच्छा होगा, ये सब तो बाहरी डेकोरेशंस हैं, ये तो आराम से प्राप्त हो सकते हैं, किसी भी ढंग से प्राप्त हो जाएंगे, इसके लिए इतना करने की जरूरत ही नहीं है। और हम ये नहीं कह रहे कि वो गवार बना के रखेंगे, वो कुछ सिखाएंगे नहीं, वो नहीं करेंगे, अच्छी शिक्षा देंगे। आज हमारे जो हमारे बोईसी में अनुरधति माता जी हैं, उनको देव बेटे हैं, राधा रमन प्रभु और गोपाल हरि प्रभु, दोनों की होम स्कूलिंग की, 17 साल में दोनों ने इंजीनियरिंग कर ली और दोनों अब PhD भी कर चुके हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, तो कहाँ कम है क्या? इतने बड़े बड़े लोग बन गए, वो किसी स्कूल में नहीं गए। प्रभुपाद साहब साहब बोलते हैं स्कूल हैं स्लॉटर हाउसेज हैं, कसाई खाने हैं, कोई बात नहीं, मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए, शराब पी ले तो क्या हो गया, इंजीनियर तो बन गया, क्या हो, बड़े हो गए माँ बाप को घर से निकाल दे, कोई बात नहीं इंजीनियर तो है, कोई बात नहीं बेटी भी MBA कर ली, शराबी तो बीती, क्या हो गया, लाख रुपए कमाती भी तो है, ये हमारे स्टैंडर्ड हो गए हैं। ये क्या सही स्टैंडर्ड है? कितने खराब स्टैंडर्ड है ये, प्रभुपाद हमसे ये अपेक्षा करते हैं, कितने दुख की बात है ये। हम सोच नहीं पा रहे, आगे समाज साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ऐसे होने वाला आगे समाज, हम फिर भी आंखें बंद कर बैठे, नहीं मैं तो चुपचाप माला कर लूंगा, नहीं मेरे बच्चे तो बड़े हो गए, अरे उसके बच्चे होंगे वो भी इसी में फंसेंगे और फिर क्या होगा। तो हम सबको इकट्ठे होकर समझना चाहिए, हमारे बच्चे कोई बुद्धू बन के नहीं रहेंगे, ये वो स्मार्ट बनेंगे। असली स्मार्ट कौन व्यक्ति है? यह तस्य हेतु प्रत्येत कोविदो ना लभ्यते यह धर्मनि उपरि धाम। इस संसार की वस्तु तो नश्वर है, हमारा बच्चा वो प्राप्त करेगा जो संसार में प्राप्त ही नहीं होता, आउट ऑफ वर्ल्ड पूरा भगवत धाम वापस जाएगा, ये ट्रेनिंग है। और संसार में रहते हुए जो उसको सुख मिलना वो तो प्राप्त हो ही जाएंगे, इंजीनियर डॉक्टर तो बड़ी बात नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं। ये जीवन इंजीनियर बनने और डॉक्टर बनने के लिए नहीं मिला, ये जीवन मिला भगवत धाम वापस जाने के लिए, समझने की बात है। ये तो क्या डॉक्टर मरता नहीं है, इंजीनियर मरता नहीं है, उसको लेने के लिए यमदूत नहीं आते क्या? उसके लिए वैकुंठ विष्णु दूत आएंगे वैकुंठ से कि नहीं IIT का इंजीनियर भी आराम से लाना, इज्जत से ला। ये क्या है, ऐसा होगा नहीं, उसको अच्छे संस्कार देना हमारा जीवन का लक्ष्य। ठीक है,
अगर गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिशियन बनना होगा तो उसके लिए काफी ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, तो अगर वुमेन एम्पावरमेंट अगर इस केस में हो, मतलब वुमेन एम्पावरमेंट, मुझे मेरे अकॉर्डिंग में इतना ज्ञानी नहीं हूं, पर जैसे वुमेन एम्पावरमेंट अगर नेगेटिव केस में जाता है, जैसे लीकर पीना, फिर स्मोकिंग करना, छोटे कपड़े पहनना, उस वुमेन एम्पावरमेंट को छोड़ के अगर हम एजुकेशन वुमेन एम्पावरमेंट जैसे डॉक्टर बनाना, क्योंकि फीमेल को जो प्रॉब्लम होगी स्किन की होगी, हम जनरली क्या करते हैं हम लोग, तो फीमेल डॉक्टर ही होना चाहिए, तो इस पर मुझे थोड़ा जानना है।
इससे पहले भी सृष्टि से बच्चे पैदा हो रहे हैं, ये स्त्री की जो योनि अभी थोड़ी आई है, पूर्व कई युग जब से संसार चल रहा है स्त्री और पुरुष हैं, और स्त्रियों के डॉक्टर शुरू से हैं, ये थोड़ी कि अभी अभी स्त्रियां आई हैं, उनको अभी भी रोग होने शुरू हुए हैं, अभी उनके लिए डॉक्टर चाहिए, शुरू से है, तो अपने आप हो रहा था, नहीं हो रहा था,
इसकी जरूरत पड़ती है।
तो पहले गायनेकोलॉजिस्ट नहीं होते थे, कौन होते थे? होती थी, एक्सपर्ट होती थी, कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं आई है. और जीवन शैली सरल होती है तो बीमारियां भी कम होंगी. और आप कह रहे हो कि ठीक है हम खाली डॉक्टर इंजीनियर बनाए, दिस इज दैट, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. मॉडर्न एजुकेशन में क्योंकि चरित्र निर्माण नहीं है तो बुराइयां साथ साथ में आएंगे ही आएंगे. कोई अपने बच्चों को, बच्चे बच्चियों को स्कूल में से थोड़ी भेजते जाए बेटे जाओ शराब पीना सीखो, ड्रग्स लेना सीखो, नहीं, वो तो इसीलिए भेजते हैं डॉक्टर इंजीनियर बनो. लेकिन साइड में सब चीज़ें मिलती मिलती हैं. आज भारत में जितने से अच्छे प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं, जितना अच्छा प्रोफेशनल कॉलेज है उतना ज़्यादा वहाँ इंटॉक्सिकेशन है, उतना ज़्यादा वहाँ इलिसिट सेक्स है, उतना ज़्यादा वहाँ ड्रग एडिक्शन है. जितना ज़्यादा फेमस कॉलेज है उतने ज़्यादा वहाँ बुराइयाँ हैं. फिर वो इसलिए थोड़ी भेजते हैं, ये मॉडर्न एजुकेशन का कमी है कि चरित्र निर्माण को बिल्कुल ख़त्म कर दो. समझ रहे बात को? इट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड. ठीक है, तो आप सब भक्तों को, हाँ लास्ट क्वेश्चन भैया.
जी लेक्चर के शुरू में आपने बताया था कि प्रेम का एक लक्षण है दूसरों के प्रति एम्पेथाइज करने का. जैसे देवकी माता जी भी यशोदा के दुख में दुखी हो रही हैं और पूरा प्रयास कर रही हैं, और फिर आपने एग्जांपल्स दिए थे रंती देव के इत्यादि. तो लेकिन हम जैसे ये भी सुनते हैं कि असली कंपैशन है आत्मा पर दया करने का, और श्रील भक्त सिद्धांत सेठ ठाकुर जी कहते हैं कि एक जो स्कूल खोल रहा है भंडारे बंटवा रहा है उससे अच्छा एक न्योफाइट भक्त है जो घंटी बजा रहा है. तो आत्मा के ऊपर दया करते हुए और ये शरीर के ऊपर दया, एम्पेथाइज, मतलब कितना हम इसको बैलेंस कर सकते हैं?
देखिए, आत्मा पे जो दया करेगा इसका मतलब नहीं है कि शरीर पे कोड़े मारेगा. जो आत्मा पे दया करेगा वो शरीर पे भी दया करेगा ही करेगा. प्रभाव उदाहरण देते ना, व्यक्ति ने 3-piece सूट डाला है गिर गया तो बच्चे व्यक्ति को बचाया, उसके कपड़े भी बचेंगे ही बचेंगे. फिर प्रभुपाद ने मायापुर में देखा नहीं, 10 मील तक रेडियस में कोई भूखा नहीं रहना चाहिए. जब बच्चों को कुत्तों से लड़ते हुए देखा तो बोलते हैं नहीं मैं आत्मा पे दया करूंगा, इनको खाना नहीं खिलाऊंगा. ऐसा नहीं है, ये गलत समझ हमारे पे. सीधे हम कठोर करते हैं, हमारे सामने दुख पा रहा है तो क्या देवकी ये बोलते, मानो मैं ये बच्चा है ये शरीर नहीं आत्मा है तो मार दो इसको. ये एम्पैथी होती है. द्रौपदी भी बोलते हैं मेरे बच्चे मरे थोड़ी है तो शरीर तो बदलना ही था, इसको भी मार दो अश्वत्थामा को.
कई स्थानों पे ऐसा होता,
वो जो केवल यही करते हैं और यही को इसी को सेवा मानते हैं वो गलत है. जो आत्मा के स्तर पे कंपैशन दिखाएगा वो निश्चित रूप से मन के स्तर पे भी दिखाएगा, शरीर के स्तर पे इंक्लूडेड है उसमें.
थैंक यू.
जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की, आनंद कोटि वैष्णव वृंद की, निताई गौर प्रेमानंद.